का मजेदार कढ़ाई, मल्ट वॉशिंग कबाब, सिजलिंग बारबेक्यू आइटम,
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे बाय डॉक्टर नाजिया रहमान, अब मिसिसागा में दूसरी लोकेशन के साथ, रूट केनाल, वाइट टीथनिंग, इम्प्लांट डेंटिस्ट्री, डेंटल क्राउन्स, विजडम टूथ रिमूवल, क्वालिटी डेंटल केयर पूरी फैमिली के लिए, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, वॉक इन एंड इमरजेंसी, एक्सेप्टिंग कैनेडा डेंटल केयर प्लान। डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे बाय डॉक्टर नाजिया रहमान, 3465 प्लेटेनियम ड्राइव, यूनिट 76, मिसिसागा, फोन 9058200900, 9058200900।
बटाला सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, हलाल मीट ते सब्जियां नाले फल भी ताजा मिलदे, इत्थे मछली अंडे दूध दही ते सस्ते चावल मिलदे, भल्ले पकौड़ियां ताजा मिठाइयां गर्म समोसे मिलदे, बटाला सुपर मार्केट,
स्कारपुरो दी वाहिद ते मिसाली सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, 200 मार्कम रोड, स्कारबोरो, मार्कम रोड से इंग्लैंडन का संगम, फोन 416-264-3111।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज, 416-792-8792।
Ringing, buzzing, hissing, time to get your hearing checked.
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
Valia Traffic Legal Services se janab RS Valia.
Careless driving,
speeding ya phir accident,
fail to remain stop at the scene,
red lights ya phir seat belts,
permit drive without insurance,
racing, student driving ya phir caught while using phone,
speeding,
RS Valia aapki ticket se nijat dilwayenge aur aapke points bhi save karenge. 9054542112 4542112।
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हो गई हैं अगले पायदान पे गर्मा गर्म खबरें लेके शाजिया मलिक साहिबा, आइए उनको भी खुश आमदीद कर लेते हैं और उनको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
कैसी हैं आप?
वैसे ही हैं हम।
अच्छा, आपके हालात बदल नहीं रहे?
हाँ, नहीं मतलब कल भी
दुनिया के हालात बदल गए, पाकिस्तान
आप टॉल नहीं हुई तो मतलब मैंने हाँ, कल भी कहा था कि मुझे खाद में मेरी फैमिली ने लगाया हुआ है,
यूरिया नहीं
डाल रहा जो भी है, फिर तुमने कहा जी अब आपके हालात क्यों नहीं, यानी मेरे हालात यानी कैसे, मैं लंबी हो जाऊंगी, मैं हसीन हो जाऊंगी, मैं जवान हो जाऊंगी, मैं क्या हूँ?
मैं वो हालात की बात कर रहा हूँ जैसे पाकिस्तान के हालात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें पाकिस्तान के हालात, सात मई के बाद से जो है वो हालात ही चेंज हो गए,
नाजुक मोड़ से निकल गए,
ठीक है ना, फिर आप देखें
वो नाजुक मोड़ हम पे आ गए।
अच्छा, वो आप पे आ गया,
हम अब नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं।
तभी मैं बोलूँ कि मोड़ पर ट्रैफिक क्यों जाम है?
हाँ, ट्रैफिक जाम है ना, जगह ही नहीं है,
जगह ही नहीं जाने की। ओहो, तो वहाँ आपकी गाड़ी फंसी
और इसमें सब तुम्हारा कसूर है क्योंकि तुमने मुझे कहा था हाईवे से जाओ, पतली गाड़ी से नहीं जाना,
तो हाईवे
जा रहे हैं तो अब ये जो मोड़ है ना हाईवे का,
जुल्म है।
हाँ, तो ये अब नाजुक मोड़ जो है ये बंद है,
जुल्म है वैसे, यकीन करें। लेकिन आप देखें ना, दुनिया भर में लोगों के हालात बदल रहे हैं।
हाँ,
और
उनके पास 7 मिलियन यूएस डॉलर आ गए हैं ना जी,
और डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं,
हाँ जी,
तो मैं कहता हूँ कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा। ये कहते हैं ना कि बोल ही रहेगा,
हाँ।
ये बेयर होना बहुत मुश्किल है।
और
सबके हालात बदल रहे हैं,
हाँ।
तो आप भी अपने हालात बदलें, मतलब कोई डिफरेंट आप
क्या नहीं क्या करें, उल्टे होके नाच रहे हैं, क्या करें भाई,
नहीं मतलब आप हालात ऐसे बदलेंगे, आप कनाडा की न्यूज के बजाय आप बोलें जी आज पहली न्यूज जो आखिरी न्यूज है,
हाँ।
वो पहली न्यूज है,
अच्छा।
तो जो पहली न्यूज है वो आखिरी न्यूज है, कैसा आइडिया?
अच्छा अच्छा,
हालात बदल गए। मैं सोचे आप स्पोर्ट्स की न्यूज पहले दे दें,
अच्छा, एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स पहले दे दे,
स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट,
हाँ,
इंडिया,
हाँ,
पाकिस्तान,
हाँ,
दुनिया भर,
हाँ,
कनाडा।
अच्छा, यानी तुमने कनाडा के साथ गद्दारी हम करें तुम चाह रहे हो, हम कनाडा को पीछे फेंक दें? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे
भाई, बाप आखिर में ही आता है। वैसे
डैडी
डैडी जैसे डोनाल्ड ट्रंप को डैडी बना दिया, हालांकि
हाँ।
डैडी उन्होंने डायरेक्टली उस सेंस में उन्होंने
हाँ।
नहीं कहा था,
हाँ, हाँ।
लेकिन रिपोर्टर आप मतलब माशाल्लाह रिपोर्टर रिपोर्टर होता है,
हाँ।
उसने तो सवाल भी दाग दिया
जी जी,
यदि आपको जो है वो डैडी कहा उन्होंने तो। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी मजे लेते हैं, उनको लगे खुश होते हैं,
अच्छा डोनाल्ड ट्रंप साहब
मेरी तरह है वो,
बड़ी पर्सनैलिटी तुम्हारे से उनकी मिलती
है,
जैसे तुम कहते हो ना खूबसूरत आदमी खूबसूरत आवाज, ये उनको भी अपने आप को कह के ना कि उनको जब
कोई और भी कहे,
और भी अगर कहे ना तुम बड़े हैंडसम हो, तुम बड़े अच्छे हो, तुम अच्छा, वो उस बेचारी को वो हिलरी को क्या क्रूकेड हिलरी क्रूकेड हिलरी कहते रहते थे ना, वो एक दफा एक इवेंट हुआ उसमें हिलरी क्लिंटन से उन्होंने पूछा कि तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप की कौन सी चीज अच्छी लगती है, तो उसने कहा कि मैं बहुत एडमायर करती हूँ डोनाल्ड ट्रंप को, जैसे इसने अपने बच्चों की तरबियत की है, दे आर वेरी नाइस यू नो, और वेरी बड़े डिसेंट है,
बहुत डिसिप्लिन और डिसेंट
है, डिसिप्लिन और डिसेंट है वो लोग ना, बस जी। ट्रंप साहब तो सातवें आसमान पे पहुंच गए, अच्छा फिर ट्रंप साहब से पूछा तुम क्या एडमायर करते हो हिलरी क्लिंटन में, तो कहता है ओ आई एम सो टच्ड, थैंक यू आई एडमायर हर करेज, एकदम जो ना 180 का डिग्री का चेंज मार लेते हैं, बड़ा खुश हुआ कि इसने
खुशामदी है थोड़ा मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप,
हाँ वो यानी खुशामद पसंद करते
हैं, खुशामद पसंद
बहुत ज्यादा करते हैं, अब जैसे मेरे जैसा बंदा है ना मेरे, हाँ। मुझे आप आके खुशामद करेंगे, मुझे वो बंदा जहर लगेगा जो मेरी खुशामद करता है,
कोई आता भी नहीं,
आता भी नहीं, 5 तो टोटल फॉलोअर्स हैं,
5 ही आप खुश रहे हैं उसमें,
हाँ उसमें खुश हैं हम, तो अगर कोई जैसे नहीं मैं कह रही हूँ जो आपका स्वभाव होता है जैसा आपका पर्सनालिटी होता है ना, तो अगर जैसे
किरदार,
हाँ तो मेरे पास अगर कोई आए कोई अगर मेरी तरह तो मुझे लगता है कि ये यार चमचागिरी कर रहा है, ये कोई दो नंबर बंदा है, ये कोई चक्कर है, कोई चक्कर है,
समटाइम जेन्युइन भी तो हो सकता है,
नहीं जेन्युइन जो है ना आजकल लोगों को जेलसीज हो गई है असल में बहुत,
वो क्यों
बहुत लोग जेलस हो गए हैं दूसरे की तालीम से दूसरे की काबिलियत से, बहुत ज्यादा जलते हैं और हर वक्त कोशिश करते हैं कि इसको तो हमने इसकी तो टांग जरूर खींचनी है और इसको तो हमने हर मौके पे जलील करना है, तो ये जेलसीज आ गई हैं।
तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ कौन चल रहा
है? तो डोनाल्ड ट्रंप साहब उस तरह के लोगों में से हैं जो अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद करते हैं,
सभी ऐसे होते हैं,
वही तो मैंने आपको अपना बताया कि मुझे वो लोग जहर लगते हैं जो बिला वजह की आके ना आपको टीसी
अच्छे लगते हैं उसमें, नहीं
वो टीसी
अगर वो आपकी तारीफ करे तो उसमें बुराई क्या?
नहीं 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 गलत, जो जो आपकी बिला वजह की यानी आपको पता है कि ही डजंट अंडरस्टैंड योर इंटेलेक्ट योर बैकग्राउंड, उसने आप जितना काम नहीं किया हुआ उतने घंटे सड़े नहीं हुए यू नो ग्राउंड पे, तो अगर वो आपको आके कहेगा ना कि ओ जी आप, तो आपको फौरन पता चलेगा कि ये खुशामदी है। हाँ अगर कोई उस लेवल का जर्नलिस्ट है जिसने के जिसको के मैंने देखा हुआ अपनी जिंदगी में कि बहुत जिसने वाकई काम किया इस फील्ड के अंदर, हाँ वो मेरी तारीफ करेगा मुझे जरूर अच्छी लगेगी,
मतलब कहने का मतलब ये कोई क्राइटेरिया
है? नहीं जर्नलिस्ट नहीं, जो काबिल आदमी है, जो काबिल
काबिल की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट होती है ना,
हाँ हाँ
काबिल वो नहीं है जिसने जो है वो पीएचडी की,
बस वही बात नहीं पीएचडी नहीं, जो तुम्हारी नजर में काबिल होगा वो शायद मेरी नजर में
हो सकता है,
हाँ बस ये बात, बस ये दिस इज
माई नजर में तो सब ही काबिल हैं,
हाँ बस आपकी नजर में सब काबिल है मेरी नजर में नहीं है, सॉरी वेरी सॉरी,
आप डिफरेंशिएट कर देती
हैं, हाँ बिल्कुल,
डोनाल्ड ट्रंप साहब काबिल हैं,
हाँ हाँ जी
डोनाल्ड ट्रंप साहब दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के
प्रेसिडेंट, काबिल शाबिल की इसमें बात नहीं है, इसमें बात खुशामद की है, उनको खुशामद
नहीं, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आके आएंगे शाहजा जी यू आर गुड, तो उसको कैसे लेंगी?
मुझे लगेगा वो खुशामद कर रहे हैं,
मतलब यू हेट हिम?
नहीं मैं आई डोंट हेट, ही इज अ वेरी वेरी स्मार्ट मैन टू द एक्सटेंट ऑफ जो है ना वो,
डोनाल्ड ट्रंप करे तो वो बिला वजह वाली नहीं है तारीफ,
नहीं पटवार साहब करेंगे तो मुझे
वो तो जानते भी नहीं आपको
वो, हाँ वो बिला वजह मुझे लगेगा
जो जानते हैं अगर वो करे
जानता ही नहीं है ना तो हाँ। वो अगर करेगा तो मुझे लगेगा ये बिला वजह कर रहा है ये खामखा ही कर रहा है इसका कोई काम है
नहीं मेरी तो डोनाल्ड ट्रंप तारीफ कर दें तो मैं तो बोलूंगा
तुम्हारी अगर करेंगे तो तुम्हें वो जानते हैं ना तुम तो हॉटलाइन पे उनके साथ ना तो इसलिए तुम मैं जानती नहीं हूं उनको मैं जानती नहीं हूं तो अगर ऐसा कभी कोई जिंदगी में मौका है कि वह हम उससे बात कर लें मेरा उनसे इंटरव्यू कर लूं और वो खुश हो जाए उस इंटरव्यू से वो कहें यू आर अ ग्रेट जर्नलिस्ट तो मुझे लगेगा ये इन्होंने क्यों ऐसे बोला है ना व्हाई बिकॉज ही डजंट इवन नो मी राइट
तो काम अब पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ पर्सनैलिटी बेसिकली आप सही कह रही हैं अक्सर लोग जो हमें भी सुन रहे हैं उनके भी अपने अपनी डिफरेंट हर एक की पर्सनैलिटी होती है लेकिन समटाइम
खुशामद पसंद है किसी को नहीं पसंद
खुशामद तो नहीं
तो मैं उन लोगों में से हूं जो मुझे
लेकिन फर्ज कर लें अगर कोई शख्स कहता है जी आमिर साहब आप जो हैं वो अच्छे एक टेक्निकल आदमी है मैं कहूंगा थैंक यू सर वेलकम अच्छी बात क्योंकि अगर किसी ने तारीफ की है तो उसको इंडोर्स कर देना मेरे ख्याल से ज्यादा
लेकिन जो जिसने आपका काम देखा नहीं और वो आपकी तारीफ कर रहा है ना
नहीं वो काम हो सकता है उसने किसी सुना हो रेडियो पे सुन लिया हो 770 के किसी लिसनर से उसको बता दिया हो
नहीं नहीं सो इसीलिए दैट इज व्हाई माय पर्सनालिटी इज
वो तो
आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग राइट वो मुझे 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 जो लोग लगता है कि जो इस काबिल हैं और वो मेरी तारीफ करते भी हैं जो इस काबिल है ना वो मेरी तारीफ करते भी हैं
जबरदस्त
तो वो जो नहीं करते
यार पर्सनल तो बात ही नहीं हो रही ना एक तो हम इंडिविजुअल उसकी बात नहीं कर रहे
तो मैं तो इंडिविजुअल ही हूँ ना भाई
हम तो एक बिगर पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं लेकिन खैर बारह लोग
कुछ पर्सनैलिटीज को जो है खुशामदें अच्छी लगती हैं कुछ को नहीं लगती हैं और मैं उनमें से हूँ जिसको नहीं अच्छी लगती लेकिन वो लोग जो वाकई मैं समझती हूँ मेरे मुताबिक आपके मुताबिक बिल्कुल नहीं या किसी और के मुताबिक बिल्कुल नहीं जो मुझे लगता है कि ये इस काबिल है यस ये इन्होंने उस टाइप का काम किया हुआ है और मुझे भी जानते हैं तो फिर वो अगर मेरी तारीफ करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा
जबरदस्त
वो तारीफ मैं जरूर लूंगी एंड आई विल डेफिनेटली टेक दैट
बिल्कुल जी वी रिस्पेक्ट एवरीबॉडी आपको पता है मेरा तो ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है और नेगेटिव तो सोचता ही नहीं और ना ही कभी सोचा है और दूसरा ये कि ट्रेनिंग ऐसी है वो ऐसी है कि आप कभी भी सामने वाले को ये मेरी अपनी अगर जैसे लोग सुन रहे हैं इस चीज को एग्री करेंगे कि आप कभी भी कोई भी सामने आपके हो उसको उसको ये शो ना कराएं कि आप उसको डाउनग्रेड कर रहे हैं या आप ये शो कराएं कि आप नहीं मैं आपकी बात ओहो फिर पर्सनल पे क्यों चलिए मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ जनरल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ अक्सर लोगों को होता है कि यार वो कहते हैं देखो जो शख्स कहते हैं ना अगर मैं वर्ड यूज करूंगे बड़ा आदमी वैसे तो मेरी नजर में कोई बड़ा छोटे के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन अगर ऐसे ले लेते हैं समझाने के लिए कोई बड़ा आदमी वही होता है जिसके अंदर जो है बर्दाश्त सबसे ज्यादा होता है जिसके अंदर दूसरे की इज्जत करने का टेम्परमेंट ज्यादा होता है दूसरे की बात सुनने का टेम्परमेंट वो इतना
है कितनों में
बहुत से लोग सब में ऐसे ही होता है
नहीं,
वही कामयाब उनको ही मैं कामयाब कहता हूँ जो
मैंने आपको भी एग्जांपल दी है कि लोग इतने जेलस हैं दूसरे की
नहीं नहीं है शाहजी जी ऐसा कहाँ है नहीं होता ये गिनती से कुछ लोग होते हैं ऐसे वो हर जगह होते हैं लेकिन मेजोरिटी मेरा एक्सपीरियंस रहा है
कि ना तो वो किसी की काबिलियत की तारीफ कर सकते हैं
कभी हमेशा
हमेशा करते हैं हमेशा टांगे
अब आप देखें मैं बात को कर रहे हैं अब 7 मई से पहले हर बंदा पाकिस्तान के क्या हालात थे अभी अगर काबिलियत आप देख लें इस वक्त फौज जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद तो काबिलियत थोड़े दिन पहले अगर आप देख लें तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो था तो ये चीजें ये वक्त के साथ चीजें चेंज होती
रहती हैं चीजें दो मिक्स करते
हैं ना मैं कह रहा हूँ ना कि आप कह रहे हैं कि यार काबिलियत होती है तो काबिलियत होती है समटाइम लेकिन सामने इतना वो एक नेगेटिव सर्किल क्रिएट हो जाता है कि उसको वो काबिलियत नजर नहीं आ रही होती तो लोग करते हैं इज्जत ऐसा नहीं है जो काबिल है वो काबिल है और मेजोरिटी लोगों में ये है जो हमें सुन भी रहे हैं वो ये होता है कि जो चीज सही है उसको लोग पसंद करते हैं उसको देखते हैं
आपकी और लेकिन सही की मिसाल
और लोगों ने वो जो जेलेसी वाला एलिमेंट है ना
डिफरेंट है
हाँ। वो जेलेसी वाली जो आप बात कर रहे हैं ये ऐसा है नहीं
जेलेसी वैसे हमारी सोसाइटी में बेतहाशा
होगा आप कह रही हैं तो होगा
नहीं नहीं है वो होगा नहीं आप खुद को आपको खुद भी मालूम है अब आप मानना नहीं चाहते हो
ये तो आप वो कह दी ना कि मेरी उसको वो उसमें हो सकता है
आपने भी देखी है और आप उसको नहीं मान रहे तो वो आपकी मर्जी है मैं जोर नहीं दूंगी आपको क्या
लेकिन नहीं होती है
होती है बेतहाशा होती है और दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने के लिए लोग बहुत कुछ डिफरेंट तरीकों से काम करते हैं
चले ठीक है हम अपना काम कर लेते हैं
हाँ।
और खबरों की तरफ चलते हैं मेरे ख्याल से
या तो शायद वही बात है दुनिया ज्यादा देख ली है तो इसलिए बहुत आपको पता है देर वॉज अ पॉइंट जिस वक्त मैं जिंदगी में 150 डिफरेंट नेशनैलिटीज के साथ काम करती थी 150 नेशनैलिटीज के साथ काम करती थी. एज अ रिजल्ट, जो ह्यूमन बिहेवियर मैंने देखा है ना
जी,
वो शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा. तो एज अ रिजल्ट अगर जो कोई मैं बात कर रही हूं वो मैं बहुत इस तरह नहीं कि मैंने आपसे सुनी या किसी से सुनी या तीसरे से या चौथे से सुन ली और फिर मैंने कर ली, मैंने खुद एक्सपीरियंस की है चीजें, है ना. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ही मैंने सारी जिंदगी काम किया. सीरियन, इजिप्शियन, इराकी, सऊदी, सऊदी तो खैर हमारे अपने एडिटर थे और बहुत सारे और भी थे, और उमानी और यूएई के अरब्स एंड स्वीडिश एंड फिलिपिनोज एंड थाईलैंड के एंड कम्बोडिया एंड चाइनीज एंड साउथ कोरियन. मतलब मैं आपको बता रही हूँ 150 डिफरेंट नेशनैलिटीज के साथ जो है वो मेरा इंटरेक्शन होता था. उसमें ये गोरे भी, ब्रिटिश गोरा जो है, सिर्फ अमेरिकन नहीं, ब्रिटिश गोरा जो है. तो मेरी अपनी जिंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं तो जाहिर है उसी के बेस पे बात करूंगी.
एग्री एंड एवरीबॉडी रिस्पेक्ट एवरीबॉडी.
हाँ, तो मैं तो उसके ऊपर बात करूंगी. और मैंने देखा है कि हमारे लोग जो है ना वो दूसरे की काबिलियत बर्दाश्त नहीं कर सकते.
मैं ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ना, जो बाद वाला है, उस पे मेरे रिजर्वेशन होते हैं, क्योंकि हम दूसरे को ऐसा स्टेटमेंट पास ऑन नहीं कर सकते. मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा नहीं करता, तो वो मुझे लगता है सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं. और ये आपके ऊपर
जो है ना, अमेरिकन अमेरिकन की तरक्की का सबसे बड़ा राज ये है कि वो टैलेंट को पहचानते हैं और फिर उसकी इज्जत करते हैं. उसकी इज्जत करते हैं और उसको फिर जाने नहीं देंगे. फिर अगर आप देखें, एक तो वो कभी किसी को वैसे ही हायर भी नहीं करेंगे, कभी किसी को नहीं करेंगे, कभी किसी के साथ, बल्कि वो दोस्तियां भी बहुत कम बनाते हैं. इसीलिए हायर अगर किसी को करेंगे और उस टैलेंट को, फिर बहुत उसकी इज्जत करते हैं और उसको रखने की कोशिश करते हैं.
तो पाकिस्तानी नहीं करते जो पाकिस्तान में जो लोग हायर होते हैं?
बहुत कम. आप जो है, हम हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ही है कि जिस वक्त तक इंडिया तारीफ ना कर ले या अमेरिका तारीफ ना या कर ले या इंग्लैंड तारीफ ना कर ले, हम उस टैलेंट को वैसे वैल्यू ही नहीं करते. हमारा जो पाकिस्तानियों का जो डीएनए है ना, वो वैसा है. आपका शायद हो सकता है कि आप कराची में जो लोग रहते हैं उसका एनलाइटेंड ज्यादा हुए, मैंने या शायद मैंने पंजाबियों को ज्यादा देखा है कि हमारा शायद डीएनए ऐसा है कि हम जो है ना अपने आप को बस बहुत बड़ा चौधरी समझते हैं. और हमें शायद अल्लाह ताला ने वो चश्मे भी नहीं दिए, आंखें भी नहीं दिए कि हम किसी का टैलेंट अपने मुल्क में अपने लोगों का, यानी अपने किसी बंदे का टैलेंट पहचान सकें. तो और इसीलिए हम जो है अमेरिका का और अपना जब कंपैरिजन करते हैं, तो दिस इज द मेजर डिफरेंस जो मैं दुनिया में देखती हूं कि हमारे में और उनके अंदर क्या डिफरेंस है कि हम अपनी चीज को कभी वैल्यू नहीं करेंगे, हमेशा उसको डिग्रेड करेंगे हम हमेशा. हाँ, लेकिन एकदम से इंडिया तारीफ कर देना उसकी, या एकदम से अमेरिका तारीफ कर दे, इंग्लैंड तारीफ कर दे, फिर हम उसके पीछे 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 फिरना शुरू कर देते हैं कि यार तुम आओ, तुमसे ये कराना है, वो कराना है, वो कराना है.
दिस इज खबरों की तरह चलते हैं. जो हमारे लिसनर्स हैं 7:70 AM के, एक ऐसी डिबेट है जिसपे 7 बजे के बाद देखेंगे इस पर आपकी, बल्कि आप लोगों की भी कॉल्स करेंगे कि आपकी नजर में क्या लगता है, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, कितनी करती हैं, क्या पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं की जाती?
पाकिस्तानियों में ज्यादातर.
अच्छा, वो पाकिस्तानी कहाँ, पाकिस्तान में ही होंगे ना?
हाँ, नहीं, सारी दुनिया में फैले.
अच्छा, आप सारे पाकिस्तानी, पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों को आप शामिल कर रही हैं?
हाँ, ज्यादातर मैं कह रही हूँ ना, ज्यादातर जो हमारे
ये सियासी लग रहा है ना, सब या कुछ, कितने परसेंटेज?
ज्यादातर
80% लोग ये कह रही है, 80% जो पाकिस्तानी दुनिया भर में होती है वो कहती है कि टैलेंट को नहीं समझते. लेकिन मैं ये समझता हूं कि ऐसा नहीं है, लेकिन इस पे आगे चल के बात करेंगे. अभी खबरों को मेरे ख्याल से इस तरफ चलते हैं और फिर उसके बाद 7 बजे के बाद हम कॉल का सिलसिला जारी रखेंगे 4166001778. और खबरों के लिए जो है पहले हमारे स्पॉन्सर जी. शर्जा जी,
ओके जी. अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी. राजा बादशाह जी के पास आप जाएं और आमिर का नाम लें. भाई आमिर के वो सबसे बड़े दोस्त हैं. देखें, आमिर जो है ना, उसी वजह से इतने उन्होंने पैसे बचा दिए आमिर के, कि आमिर गरीब वाला जो यूरोप है ना उसके टूर के ऊपर जा रहा है. 1775 आमिर के बचाए हैं. अगर आपके पास 2 गाड़ियां और 1 घर है तो आप राजा बादशाह जी के पास जाएं. ऑल स्टेट के साथ होते हैं तो आपको बहुत अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी वो देते हैं. और उनका नंबर है 6472903773. इसके अलावा अगर आपको अपने ट्रक का हेल्थ अच्छा रखना है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल सही प्रॉपर मैकेनिक मेरे ट्रक को देगा, क्योंकि ट्रक्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप नेपनी की लोकेशन पे क्विक ट्रक लीव पे जाए, QTL जो है उनके पास ऑयल्स भी ऑथेंटिक्स हैं, मैकेनिक्स बहुत अच्छे हैं, तो आप उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल भी कर सकते हैं 1519-622-0660। और अगर आपके दांत खराब हो गया है तो आप डॉक्टर नाजिया रहमान के पास जा सकते हैं और उनके तीन जो हैं वो डेंटिस्ट्री के क्लिनिक्स हैं, आप उन पे जाइए और सुविधाएं दांतों की ले सकते हैं। कैसी भी आपको चाहिए, इम्प्लांट्स चाहिए, क्राउन्स चाहिए, व्हाइटनिंग चाहिए, ब्रेसेस चाहिए, कुछ भी, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं 9058721100। अच्छा ज्वेलरी आपको लेना है, कोई भी बड़ा इवेंट आ रहा है आपके फैमिली के अंदर, शादी ब्याह कुछ भी, तो आप असलम भाई के पास पायल ज्वेलर्स पे जाएं। पायल ज्वेलर्स जो है वो 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव ब्रैम्पटन में है, इनका नंबर है 9057907879। और अगर आपको बंडल डील्स में अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए है जो कि बाकी मार्केट से कम प्राइस पे भी हो, तो आप सुल्तान भाई के पास ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे जाइए, 801 बोवेट ड्राइव वेस्ट पे ये है, इनका नंबर है 9054502828 9054502828। और जी आपने अच्छे कपड़े लेने हैं ना फटने वाले मर्दों के, लेकिन इटालियन जो कॉटन और वुल के, तो फिर आप स्पेरन मके पे जाए, 775 ब्रिटानिया रोड वेस्ट पे है, इनका नंबर है 9056703388। और खाना अगर अच्छा खाना चाहते हैं तो फिर आप जाएं फैसल चट्टा के पास विलेज टेस्ट में, विलेज टेस्ट के भी दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक मिसेस सागा में और एक ओकविल में, तो अगर आपको कोई भी अपने घर में पार्टी करानी है यानी डाइन आउट करना है या डाइन इन करना है, टेक आउट करना है, या आपने वहीं पे बैठ के खाना है, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं 6477744888। ठीक है जी, तो हम अपनी पहली खबर से शुरू कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि कर्णी साहब ने कहा जी कि हम नेटो एलाइज का बिल्कुल जो है रिस्पेक्ट करते हुए 5% ऑफ जीडीपी जो है वो डिफेंस पे हम खर्च करेंगे 2035 तक। 32 नेटो मेंबर्स जो है उन्होंने आज ये कमिटमेंट किया है एनुअल लीडर्स मीटिंग की जो द हेग नेदरलैंड्स में शुरू हो गई है, और जो है ये हमने आपको कल ही बताया था कि ये जो जीडीपी का अगर कनाडा यूज करेगा 5% तो इट्स गोइंग टू बी अ हुफिंग 150 बिलियन US डॉलर्स पर ईयर। तो इसको दो हिस्सों में ब्रेक किया है कर्णी साहब ने, वो कहते हैं जी कि पहले हिस्से में 3.5% एम करेगा एट कोर डिफेंस नीड्स, जिसके के अंदर हम जेट्स लेंगे और वेपन्स लेंगे, 1.5% जो है ऑफ डिफेंस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जैसे कि डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करेंगे। उन्होंने कहा जी कि जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा डेंजरस और डिवाइडेड जगह बनती जा रही है और कनाडा को अपना डिफेंस जो है अपना बेटर करना पड़ेगा, अपनी सॉवरेनिटी का ख्याल करना पड़ेगा और अपने एलाइज जो है उनका भी इंटरेस्ट का ख्याल करना पड़ेगा। तो अर्लियर इससे पहले जो था उन्होंने बोला था कि जी मैं 9.3 बिलियन डिफेंस पे खत्म करूंगा और नेटो का जो 2% यानी ये एडिशनल पैसे थे जो ऑलरेडी खर्च कर रहा है कनाडा उससे एडिशनल, तो वो कहते हैं जी कि नेटो का 2% जीडीपी टारगेट जो है हम इसी साल में पूरा कर लेंगे। लेकिन एक इंटरव्यू दे रहे थे सीएनएन को, उन्होंने कहा जी कि हम 2035 है उस तक ये हम 5% ऑफ अपना जीडीपी जो है वो खर्च करेंगे, क्योंकि दिस इज अ लॉट ऑफ मनी, ये जो 150 बिलियन डॉलर्स है। और वो कहते हैं जी कि उन्होंने जब पूछा कि आप ये कैसे डेवलप करेंगे, तो उन्होंने कहा जी कि हम अपना क्रिटिकल मिनरल सेक्टर जो है वो डेवलप कर रहे हैं और वो काफी एक्सपेंसिव है आपको पता ही है, तो उन्होंने कहा जी उससे हम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये ईरान इसराइल के बीच में ये जो जंग रुक गई है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसकी वजह से मिडल ईस्ट के अंदर जो है आएगा पीस आएगा और गाजा के अंदर भी हॉस्टैलिटीज रुक जाएंगी। लेकिन एक जो उन्होंने फिर सेंटेंस बोला उस पर आज दुनिया बहुत ज्यादा भड़की हुई है जो कर्णी साहब के ऊपर, उन्होंने कहा जी कि ये जो पीस जब आएगा गाजा में तो वहां पे एक जायनिस्ट पैलेस्टीनियन स्टेट जो है वो होनी चाहिए जो कि कमिट करेगी इसराइल की सिक्योरिटी। तो इसके ऊपर जो है वो बहुत आज इनको वो फिर आया, लोगों ने कहा कि एक जो जायनिस्ट पैलेस्टीनियन स्टेट होगी उसको जायनिस्ट रिजीम्स जो है वो कंट्रोल करेंगे और उसमें पैलेस्टीनियंस का हाल जो है वो खराब रहेगा। अब ये जो 150 बिलियन डॉलर्स पर ईयर का इन्होंने 5% डिफेंस का जो बजट जो है मीट करना है, तो उसके ऊपर आज जो ट्रोनो रीजनल बोर्ड ऑफ ट्रेड टिम हॉटसन है उन्होंने आज बिजनेस लीडर्स को बोला है कि अपनी इकोनॉमी को रीटूल करने के लिए आप क्या क्या आइडियाज लेकर आ सकते हैं, जैसे कि आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दिए थे। तो अब लोग कह रहे हैं कि अगर यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स जो हैं वो बढ़ानी है तो फिर अगर इतना पैसा डिफेंस पे चला जाएगा तो फिर एजुकेशन पे और हेल्थ केयर पे और बिजनेसेस के पास जो है कैसे पैसा रह जाएगा कनेडियन गवर्नमेंट के पास कि उनको इंसेंटिव्स दे और वो उनको डेवलप कर सके। तो ये आज काफी क्वेश्चंस जो हैं यहां पे किए गए हैं। तकरीबन 72 के करीब लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा जी आज बीमार हो गए हैं, सलामी उन्होंने खाई है जिसके के अंदर सेल्मोनेला का कॉन्टेमिनेशन हो सकता है, उसको रिकॉल किया गया है। पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा जो है उन्होंने कहा जी कि एक आउटब्रेक है सेल्मोनेला इन्फेक्शन का और ये लिंक्ड है टू रिया ब्रांड जिनोना सलामी स्वीट एंड रिया ब्रांड जिनोना सलामी हॉट एंड बोना ब्रांड माइल्ड जिनोवा सलामी, इन सबसे जो है ये रिलेटेड है। कनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी जो है उसने ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स रिकॉल किए हैं ऑन्टारियो अल्बर्टा एंड मैनिटोबा में, क्योंकि इसकी वजह से जो है जो लोगों की हालत खराब हुई है वो 57 इन अल्बर्टा, 14 इन ऑन्टारियो, 1 इन मैनिटोबा, 7 लोगों को हॉस्पिटलाइज जो है वो किया गया है। क्राइम जो हैं जनाब वो बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और हैमिल्टन पुलिस ने आज सीज किए हैं 200,000 इन कैश फ्रॉम बैंक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस और ये बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन जो है इस पे इन्होंने बिठाई हुई थी और उसके बाद फिर इन्होंने सर्च वारंट्स निकाले थे एट कॉन्डो एट शॉल्टन एवेन्यू ईस्ट के ऊपर और वहां पे एक मोटर व्हीकल भी इनको मिला था। इसके साथ साथ $11,000 कैश थे, कोकेन थे, फेंटेनॉल थी और भी बेशुमार ड्रग्स थी। फिर सेकेंड टीडी बैंक का जो सेफ्टी डिपॉजिट बैंक है उसके कीज मिले और एक और इन्होंने एक्सेस किया सेफ्टी डिपॉजिट बैंक एट टीडी बैंक एट किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन में, वहां से सीज किया $100,000 कैश। एक और सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स जो है टीडी ब्रांच ऑन फेनल एवेन्यू ईस्ट जो है उसको भी इन्होंने देखा और सीज किए $80,000। इसके साथ साथ पीर पुलिस जो है वो पब्लिक को कह रही है कि भई ये जो एक फेटल शूटिंग हुई थी, जो एक आदमी अपने वर्क प्लेस पे जो है बहुत गंभीर अंदाज से जख्मी हो गया था ब्रैम्पटन में लास्ट वीक, और इस आदमी का नाम जो है शर्मनप्रीत सिंह जो है वो बताया जा रहा है, और जो ये जख्मी हालत में जब इसको लेकर गए थे हॉस्पिटल तो इसकी डेथ हो गई थी। यहां पे एक ऑटोमोटिव कॉम्प्लेक्स है नियर रदरफोर्ड रोड साउथ एंड कैनेडी रोड। आमिर तुम्हें पता है ये मेरे घर के पास हुई थी, ये वाला वाक्य मेरे घर के पास हुआ था। तो उसमें आज पुलिस कह रही है कि अगर आपको इस सिलसिले में कोई भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप जरूर बताएं। और जो इसमें एक डार्क कलर्ड सीडान जो यूज हुई थी इसको मारने के लिए, वो फिर थोड़े दूर के बाद कोई मिलब्रो टाउन लाइन कैम्स बेवल जो के पास जब मिली तो उसको आग लगा दी गई थी। यानी कि जाहिर है कि जिन्होंने ये कारनामा किया था मारने का उस आदमी को, वो चाहते नहीं थे कि वो पकड़े जाए तो पूरी जो गाड़ी थी वो जला दी थी। इसके साथ साथ जी ये जो सस्पेक्ट है एक जोसेफ ड्राइसडेल, इसको भी आज पुलिस ने पकड़ा है क्योंकि इससे भी जो है वो इसके खिलाफ आई थी खबर कि जी इसने असॉल्ट किया है विद अ वेपन और बहुत सारे थ्रेट्स जो है लोगों के खिलाफ बोले हैं और पुलिस इसको हेट मोटिवेटेड ऑफेंस कह रही है। तो बहुत ज्यादा जनाब क्राइम्स जो है ना वो बढ़ते चले जा रहे हैं और पता नहीं है कि पुलिस के पास प्रॉपर पुलिस फोर्स है इन चीजों को रोकने के लिए कि नहीं। आज रॉजर्स नेटवर्क जो है उसमें फिर से आउटरेज जो है वो बताया गया है। एक साइट है डाउन डिटेक्टर .ca, ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है और इसने कहा जी कि आज सुबह 11 बजे रॉजर्स नेटवर्क जो है वो डाउन था। तकरीबन 6,900 जो लोग हैं उन्होंने ये इश्यू रिपोर्ट किया था। ये सर्विस जो थी इफेक्टेड थी काफी सारी जो है प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, मोबाइल इंटरनेट वगैरह के ऊपर, और फिर बाद में जो है इसका बारे में बात आई कि शायद हौले हौले जो है अब ये रिस्टोर हो रही है तो लोगों को काफी जो है परेशानी रही है। इन नेटवर्क्स के अंदर अब काफी आउटरेजेस आने शुरू हो गए हैं, अब रीजन पता नहीं चलता है कि कोई इनको साइबर अटैक कर रहा है क्या कर रहा है, क्योंकि रॉजर्स की तरफ से कोई इसके ऊपर बात नहीं आई है। ट्रंप साहब जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नेटो जो समिट हो रही है उसमें उन्होंने कहा जी कि यूएस और इरानियन ऑफिशियल्स जो है नेक्स्ट वीक से उनके बीच में बातचीत शुरू हो जाएगी और बातचीत जो थी ये इंटरप्ट हो गई थी जब इसराइल और ईरान का वॉर जो है वो शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि इसके बीच में हम डेफिनेटली एक अग्रीमेंट जो है वो साइन करेंगे, शायद ना भी करें लेकिन बातचीत तो जरूर शुरू है, क्योंकि वो सर्टन तो होते नहीं है ना किसी बात पे कि नहीं हर हाल में हम ऐसा करेंगे या करना चाहेंगे। नहीं, वो कहते हैं हम साइन कर सकते हैं अग्रीमेंट, नहीं भी कर सकते हैं, तो इस तरह करके। और फिर उन्होंने कहा जी कि जो है वो ये टॉक्स जो हैं हम कोई इतने खैर इंटरेस्टेड भी नहीं थे इसके साथ करने के लिए, लेकिन जाहिर है कि इलाके के अच्छे के लिए जाहिर है यूएस चाहता ही है कि ये वॉर्स को रोके। और उन्होंने आज फिर से एक दफा इंसिस्ट किया कि यूएस स्ट्राइक्स जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय किया न्यूक्लियर प्रोग्राम के काफी सारे जो इनके साइट्स के हिस्से हैं उसको। ईरान जो है उससे जब पूछा गया, मीडिया ने पूछा कि जी आप ये टॉक्स कर रहे हैं यूएस के साथ नेक्स्ट वीक, तो उन्होंने कहा जी हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, और वो कहते हैं जी कि लेकिन मिडिल ईस्ट के जो एनवॉय हैं यूएस के स्टीव विटकॉफ, वो डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे साथ इन कम्युनिकेशन है। और जो है ट्रंप साहब जो हैं, उन्होंने ये जो ब्रोकर की थी सीज फायर बिटवीन ईरान एंड इसराइल, तो उन्होंने कहा जी इट इज गोइंग वेरी वेल। और फिर आज इन्होंने फिर बहुत बड़ा आज एक धमाका छोड़ दिया, उन्होंने कहा जी ईरान इज नॉट गोइंग टू हैव अ बॉम्ब, दे आर नॉट गोइंग टू एनरिच देयर फैसिलिटीज। अब आपको कैसे उन्होंने बताया, कैसे बताया, बहरहाल जी ये बात है। पार्लियामेंट्री स्पीकर जो है ईरान के मोहम्मद बागेर गलीबाफ, उन्होंने आज बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया आईएईए को, उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल इन्होंने कंडेम नहीं किया है यूएस अटैक को ऑन ईरान जो कि इनको करना चाहिए था। पाईगन तुम भी चैन करो कई, उन्होंने सीज फायर उसने करा दिता है, बंदे क्यों छेड़ रहे हो तुम, तो जरा थोड़ी बहुत तारीफा कर लो उस खुश हो जाएगा। बहरहाल जी इन्होंने फिर से आज ये कहा। न्यूयॉर्क के अंदर आपको पता ही है कि फर्स्ट म्यूरल प्राइमरी जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कैंडिडेट जोहरान ममदानी जो है उन्होंने ये फर्स्ट प्राइमरी जो है जीता है, और लोगों को ज्यादातर यही लग रहा है कि शायद ये मेयर बन जाएगा, लेकिन जो अमेरिका के बिलियनियर्स हैं वो बेतहाशा नाराज हैं। एंड इट इज यानी ऑब्वियस ही है क्योंकि फॉर्मर गवर्नर एंड्रियो कूमो, जिनके के ऊपर बेशुमार सेक्सुअल हरासमेंट के और दूसरे केसेस के एलिगेशंस थे, उनके ऊपर इन बिलियनियर्स ने बिलियंस ही लगाए थे कि ये जीत जाए फिर से। पर्शिंग स्क्वायर के जो बिल एक्मैन हैं, जिन्होंने डोनेट किया था 500,000 यूएस डॉलर कूमो को, और उसने बैक किया था ट्रंप का भी 2024 का कैंपेन, उन्होंने बेतहाशा इनका जो है ऊपर इतराज किया, उन्होंने कहा कि सिर्फ 10% वोटर्स जो हैं न्यूयॉर्क में निकल के आए उन्होंने वोट किया, तो हम कैसे अलाउ कर सकते हैं कि 9.1% रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो डिटर्मिन करेंगे न्यूयॉर्क सिटी जैसे मेन और इतने बड़े सिटी का फ्यूचर, और अगर उनके साथ फिर कुछ बुरा होएगा तो वो डिजर्व ही करते हैं कि वो इसको चूज कर रहे हैं। बिलियनियर ग्रोसरी चेन ओनर जो है जॉन कैटिस मैटेडिस जो हैं, उन्होंने भी ट्रंप साहब को भी बैक किया था, और उन्होंने अब थ्रेटन किया है कि इसके जो क्रिस डेटिस जो स्टोर्स हैं न्यूयॉर्क के अंदर वो सारे के सारे शट डाउन कर देगा अगर ममदानी जो है वो उसको मेयर इलेक्ट किया गया। इसी तरह आज एलॉन मस्क साहब जो थे वो भी बहुत ज्यादा जो है वो इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन्होंने तो बल्कि एक जो है सेनेटर फ्लोरिडा से उनका जो है एक लॉ मेकर जो है फ्लोरिडा से उनका एक ट्वीट भी रिट्वीट किया हुआ था जिसमें कि उसने कहा था कि अगर आप न्यूयॉर्क में ना खुश हो जाओ तो आप फ्लोरिडा में आ जाओ, तो इस तरह करके। जोहरान ममदानी जो है काफी प्रो पैलेस्टीनियन है और काफी ये जो है मुसलमान है, और इन्होंने अपनी मुसलमान आइडेंटिटी बिल्कुल छुपाई नहीं है। जो कैंपेन जब हो रही थी तो मस्जिदों में जा जाके मुसलमानों से मिल रहे थे और उनको कह रहे थे कि हम आपके लिए अच्छे जो है हालात लाएंगे। ये जो है एक बहुत बड़े जो अमेरिका की बहुत बड़ी जो यूनिवर्सिटी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उसमें स्कॉलर हैं इनके वालिद साहब महमूद ममदानी, वो उसके ये बेटे हैं, और जो है इनकी मां जो है इंडिया की बहुत बड़ी फिल्म मेकर है, आपने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा मीरा नायर का, तो मीरा नायर के ये बेटे हैं, तो और इनकी वाइफ जो है वो सीरियर है और वो आर्टिस्ट है, उसका नाम है रवा दुवेजी, तो काफी मिक्स्ड सी इनकी फैमिली है, और ये जो है काफी जो है ये इनको अपनी मुसलमान होने की ऊपर काफी वो है, और अगर ये न्यूयॉर्क के मेयर बन जाते हैं तो ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मुस्लिम टू बी द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, तो काफी इनके ऊपर जो है बिलियनियर्स जो है अमेरिका के बड़े नाखुश हैं। पेंटागन की जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने आज एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई है जिसमें कि वो देखना चाहते थे कि ये जो यूएस ने स्ट्राइक्स किए थे ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर वो कैसे गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारी की सारी लीक हो गई। अब जब लीक हो गई तो ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये डीआईए रिपोर्ट जो है इसके लीक होने पे बहुत ज्यादा नाराज हैं, उन्होंने काफी इसको प्ले डाउन करने की कोशिश की है, लेकिन जाहिर है कि ये अब सारी रिपोर्ट लीक हो गई है। अब ये जो प्राइमरी रिपोर्ट थी इसके ऊपर इन्होंने पेंटागन ने कहा है कि ये काफी लो कॉन्फिडेंस है हमारा इसके ऊपर। यूएस ने जो बॉम्ब किए थे 3 इरेनियन न्यूक्लियर साइट्स इंक्लूडिंग फोर्डो, तो उसके ऊपर वो कहते हैं जी कि ये जो इम्पैक्ट है वो कैसा आया है वो अभी तक हमें पता नहीं है, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایران بار بار کہہ رہا تھا کہ جو میجورٹی آف نیوکلیئر ہماری جو کیپیبلٹی ہے وہ انٹیکٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں جی جب مور اب انٹیلیجنس آئے گی تو ہم اس کے اوپر یعنی ایڈیشنل آئے گی تو ہم اس کو اور ریفائن کر کے بتائیں گے اور ہم اس کے اوپر جو ہے اب بٹھائے گے ایکچوئل سائٹ. اچھا یہ جس وقت رپورٹ آئی اور ٹرمپ صاحب نے بڑے غصے کا بھی اظہار کیا کہ یہ ڈی آئی اے کی رپورٹ کیوں ہوئی ہے, ایران نے جو کہ ابھی تک کہہ رہا تھا کہ جی ہماری نیوکلیئر سائٹس بالکل سیف ہے, کوئی اس کے اوپر ڈیمیج نہیں ہے, آج ایران نے پہلی بار ایڈمٹ کیا ہے کہ اس کی نیوکلیئر سائٹس جو ہیں دے ور بیڈلی ڈیمیجڈ بائی 30,000 pound بامبس جو کہ ڈراپ کیے گئے تھے بائی USB2 بامبر, تو جن کو کہ بنکر بسٹرز بھی کہا جاتا ہے, اینڈ ڈزن آف ٹاما ہاک مسلز جو ہمارے یہاں آپ کو یاد ہی ہے ٹاما ہاک سے, اگر آپ کو کچھ یاد ہے افغانستان یاد آتا ہوئے گا آپ کو, ٹاما ہاکس بہت زیادہ مارے تھے امریکہ نے افغانستان کی وار میں بھی, اور وہ کہتے تھے کہ سارے ان کے جو یہ ہیں ماؤنٹنز جو ہیں ہم سب ڈھا دیں گے, تو وہ آج ایران جو ہے اس چیز کو مان گیا ہے. تو اب انہوں نے اب جب مان لیا ہے تو آج ڈی آئی اے نے کہا ہے کہ اب ہم فردر انفارمیشن جمع کر کے اور پینٹاگون کو ساری کی ساری جو ہے وہ رپورٹ دیں گے. یہ جو ریس ہے جناب اب بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویپنز ہونے چاہیے, اس کے اندر یو کے جو ہے اس نے آج اناؤنس کیا ہے کہ وہ پلان کر رہا ہے کہ وہ ڈزنز آف F-35A فائٹر جیٹس لے گا امریکہ سے جو کہ کیری کر سکتے ہیں ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز. کارل اسٹارمر کے آفس نے یہ کہا کہ یہ جو یو کے ہے جو انگلینڈ کی جو نیوکلیئر پوسچر ہے آنے والی جنریشنز کے لیے اس کو مضبوط کرے گا, اور جو ہیں پرائم منسٹر صاحب بھی جلد ہی اس کے اوپر اناؤنسمنٹ کریں گے. یہ یو کے کی جو ایئر فورس ہے وہ اب نیوکلیئر ویپنز فار دا فرسٹ ٹائم کیری کر سکے گی ایٹ دا اینڈ آف دا کولڈ وار, اور یہ ساری کی ساری ڈسکشن جو ہے نیٹو کی سمٹ جو دا ہیگ میں چل رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے کیا گیا. انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ انسرٹینٹی ہے اور ہم کو اپنا نیشنل جو سیکورٹی ہے اس کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے جو ہیں انہوں نے کافی اس ڈیسیجن کا تعریف کیا. F-35A جس کو کہ پروڈیوس کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی لاکیڈ مارٹن, سملر ٹو F-35B جو کہ کرنٹلی ابھی یوز کرتے ہیں یو کے کی ایئر فورس, لیکن وہ جو ہے صرف نیوکلیئر بامبز لے کے جا سکتی ہے, لیکن یہ اب نیوکلیئر دوسرا آرسنل بھی لے کے جا سکے گی. 7 نیٹو ممبرز جو ہیں انکلوڈنگ یو ایس جرمنی اینڈ اٹلی ان کے پاس یہ ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کیری کر سکتے ہیں USB-61 نیوکلیئر وار ہیڈز, اور جرمنی جو ہے وہ بھی اب اس نے بھی اناؤنس کیا ہے آج کہ وہ بھی سپینڈ کرے گا $23 billion آن ایمونیشن پروکیورمنٹ ان لانگ ٹرم. تو جناب کہاں کے کہاں جو ہیں یہ اور آرمز, تو یعنی کہ یو ایس کی جو کمپنی ہے ان کی تو چاندی ہے جی, یہ جو بناتے ہیں یہ اتنے ہائی اینڈ جو بناتے ہیں, بٹ دا تھنگ از کہ اف یو آر دا بیسٹ تو دنیا آپ کے پاس آئے گی. جو واقعی انہوں نے انویسٹمنٹس کر دیے ہیں اور جو امریکہ کا نے جو ناسا جو ان کا اسپیس جو پروگرام ہے اس کا کوئی میچ نہیں ہے, جو دیکھیں جی جو بات صحیح ہے وہ ضرور کرنی چاہیے, تو ان چیزوں کا کوئی میچ نہیں ہے. اس کے جو امریکن اکوپمنٹ ہوتا ہے ہوتا تو بہت زیادہ ایکسپینسو ہے, بے تاچا ملینز میں اس کی ہوتی ہے, لیکن دے آر ایکچولی ٹاپ آف دا لائن. لیکن سانو کی جی ساڈا تو فرینڈ چین ہے, اسی نے چینا کو لینا ہے اور چینا جو ہے فریکشن آف دس پرائس میں ہائی اینڈ چیزیں دیتا ہے پاکستان کو, تو دیٹ از. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ایسا کوئی خراب سا کنٹری, پاکستان اپنے خود کے بھی ہم نے آپ کو بڑی دفعہ 50,000 times یہ بات کہی ہے, پاکستان کی ملٹری واحد ملٹری ہے جو کہ اپنا خود کا بھی ایونٹ جو ہے وہ بناتی ہے, تو پاکستان خود بھی بہت کچھ بناتا ہے ماشاءاللہ, خاص طور پہ اپنے مسلز وغیرہ جو ہے بڑے اچھے بناتا ہے. کیوں جی عامر صاحب ٹھیک ہے نا, یہ بات ہے نا, عامر کو سارے مسلز کے نام آتے ہیں کیونکہ عامر بھی انہوں میزائلوں میں ہوتے چڑے ہو جی, سارے نام پتا ہے اس کو, عامر آپ کو بتائے گا. اچھا جناب اسرائیل کے اٹیکس جو ہیں غزہ کے اوپر وہ کانسٹنٹلی چل رہے ہیں, اور آج بھی 74 بندہ انہوں نے مار دیا ہے, خاص طور پہ جو ایڈ ڈسٹریبیوشن سینٹر ہیں ان کے خلاف کافی مارا ہے, جو یہاں پہ العودہ اور الاقصی جو مارٹرز ہاسپٹل ہے غزہ میں انہوں نے یہ ساری ڈیتھس جو ہیں یہ ان کو کنفرم کیا ہے, اور بہت ساری جو انجریز آئی ہیں اس کے اندر وہ بھی یہ ہے, اور یہ سارا کچھ ادھر ہوا یہ نیئر نیٹزیرین جنکشن ان سینٹرل غزہ, اور یہ جو بہت سارے ایڈ ڈسٹریبیوشن سینٹرز ہیں دے آر بینگ ڈن بائی یو ایس بیکڈ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن, جس کو کہ دنیا کے تمام کرٹکس کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیومن سلاٹر ہاؤسز ہیں, ایڈ کے نام پہ پیلسٹینینز کو یہاں پہ جمع کیا جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر گولیاں اور بامب برسائے جاتے ہیں, تو یہ ڈیتھ ٹریپس ہیں. इसी के साथ साथ आज और भी पांच लोग जो हैं देर अल बलाल के अंदर भी उनकी भी डेथ हुई है। कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल जासिम अल थानी, उन्होंने कहा जी कि इनडायरेक्ट टॉक्स हमास और इसराइल दोनों के साथ जो है नेक्स्ट टू डेज में शुरू हो जाएगी। ट्रंप साहब ने भी आज द हेग में जो नेटो का समिट हो रहा था उसमें रिपोर्टर्स को कहा है कि हमने गाजा वॉर के अंदर काफी प्रोग्रेस की है। तो अब वो क्या प्रोग्रेस है उसकी डिटेल्स उन्होंने नहीं दिए हैं, और उन्होंने कहा जी कि ये जो यूएस ने स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर किए थे इसके मिडिल ईस्ट के ऊपर काफी पॉजिटिव इफेक्ट्स आए गए। उन्होंने कहा जी कि उनका स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ जो है कॉन्स्टेंटली गाजा में पीस डील के ऊपर काम कर रहा है, और बहुत सारे जो इसराइली हैं लेकिन अब वो नतन्याहू के बहुत ज्यादा खिलाफ होते जा रहे हैं, वो भी गाजा की इस वॉर को रोकना चाहते हैं और वो पूछ रहे हैं कि नतन्याहू क्यों इस वॉर को कंटिन्यू करना चाहता है। भाईजान अगर आपको नहीं पता हम बता देते हैं, वो इसलिए कंटिन्यू करना चाहता है कि जैसे ही उसकी जो है गवर्नमेंट गई उसके ऊपर करप्शन चार्जेस खुल जाएंगे और बाकी जिंदगी वो जेल में गुजारेगा, तो इसलिए वो कंटिन्यू करना चाहता है। उसका अपने खुद के सर्वाइवल के लिए लोगों को मार रहा है वो, तो वो कहते हैं कि ये जो है वॉर को बंद करें, खुद इसराइली कह रहे हैं, और इसके अलावा जो कैप्टिव्स हैं गाजा में उनको भी लाएं। तो वो होप करते हैं कि वो कहते हैं जी कि नतन्याहू से तो हमें कुछ होप नहीं है लेकिन हम होप करते हैं कि जो ट्रंप साहब है वो जरा ये जल्दी से ये काम कर सकेंगे, और जो है ये क्योंकि नतन्याहू तो अपनी कोलिशन और अपनी गवर्नमेंट दोनों रखना चाहता है लेकिन ट्रंप साहब का डिफरेंट एजेंडा है। जाहिर है कि एजेंडा आपको पता ही है, वॉर्स रोक के दुनिया के अंदर नोबेल प्राइज वो लेना चाहते हैं। तो इसके लिए जो इजरायली हैं वो कहते हैं कि ट्रंप साहब जो है शायद इस सारी चीज को रोक सकते हैं। अच्छा जनाब, यूएई जो है इट कंटिन्यूज टू बी द टॉप अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर मिलियनेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया सारी के मिलियनेयर्स जो हैं वो यूएई के अंदर जो है वो जाना चाहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे ह्यूज टैक्स इंसेंटिव्स है, जैसे कि जीरो इनकम टैक्स है, जीरो वेल्थ टैक्स है, इसके अलावा बेतहाशा सिक्योरिटी है, इसके अलावा इंतहाई खूबसूरत अब उन्होंने मुल्क बना दिया हुआ है और दुनिया जहान की फैसिलिटीज जो हैं वो हैं, दुनिया जहान के ब्रांड्स वहां पे हैं। यूरोप के अब आपको चक्कर मारने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई भी हाई एंड ब्रांड खरीदना है दुबई के अंदर है वो आपको बाकी यूरोप से दुनिया से सस्ता मिलेगा क्योंकि टैक्स नहीं, जैसे हम यहां पे देते हैं ना कोई चीज आप लेने जाओ जी बर्गर $10 प्लस HST, नहीं HST कोई भी नहीं है वहां पे, ठीक है जी, तो 10 धर्म्स का मतलब 10 धर्म्स ही है, ठीक है, तो इसलिए लोग जो है बड़े खुश है। ये जो है 2024 में यूएई ने 130,000 मिलियनेयर्स को अट्रैक्ट किया था, इसके अंदर जो है 325 सेंटी मिलियनेयर्स थे। अब अगर आपको पता हो कि सेंटी मिलियनेयर्स किसको कहते हैं, सेंटी मिलियनेयर्स उनको बोलते हैं जिनके के पास जो है वो बाइंग पावर होती है, उनके पास लिक्विड कैश होता है, यानी कि एलॉन मस्क की तरह नहीं ओ जी सारा कुछ मेरा जड़ा है उस स्टॉक्स दे विचे, पर तू तो बिलियनेयर है, हाँ बिले तो फिर पैसे खर्च कर, पैसा है नहीं कितने वे स्टॉक्स दे विचे, ऐसा नहीं, सेंटी मिलियनेयर्स वो होते हैं जिनके के पास पैसा होता है, कैश होता है, जिनके पास लिक्विड कैश होता है। इसके अलावा 28 बिलियनेयर्स जो हैं वो दुबई में आए हैं और इन सारों ने मिलकर 785 बिलियन यूएस डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं यूएई में बाय द एंड ऑफ 2024। इसके अलावा DIFC, दैट इज दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, ये जो है इस वक्त मैनेज कर रहा है $450 बिलियन के प्राइवेट वेल्थ में। अबू धाबी का जो ADGM है वो हैंडल करता है हंड्रेड्स ऑफ फंड्स एंड वेल्थ मैनेजर्स। 2024 में 6,700 से 7,200 मिलियनेयर्स जो है रीलोकेट किए हैं यूएई में एंड दे ऑल्सो ब्रॉट 7 बिलियन यूएस डॉलर्स इन फ्रेश कैपिटल एंड दिस वॉज इन द अर्लियर पार्ट, दिस वॉज नॉट द होल ऑफ जो 2024 है उसकी हमने आपको फिगर दे दी है। और यूएई अब 2025 में भी बेशुमार जो है बिलियनेयर्स को अट्रैक्ट कर रहा है और अभी तक 9,800 बिलियनेयर्स रीलोकेट कर गए हैं यूएई में, इसमें 4,543 इंडियंस थे और 2,154 पाकिस्तानी कंपनीज थे और ये यहां पे जो है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में आए हैं। इसके अलावा 1,362 न्यू इजिप्शियन कंपनीज जो है बिलियनेयर्स की उन्होंने भी आके यहां पे सेटअप शुरू किए हैं। तो जनाब क्या बात है, हम इधर लेते हैं थोड़ी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो जनाब हम आपको सुनाएंगे कहानियां पाकिस्तान हिंदुस्तान और एंटरटेनमेंट से और स्पोर्ट्स की दुनिया से।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
अकाल ट्रक एंड लूम
साडे ट्रक बादशाह दी क्वालिटी सर्विस रिपेयर ऑयल चेंज वॉश ते मेंटेनेंस।
एक और खुशखबरी,
नॉर्थ अमेरिकन चाइनीज ते कोरियन नवे ते इस्तेमाल शुदा टायर विद फुल वारंटी।
Akal Truck and Loop, 1776 Mearside Drive, 905-565-1100. 905-565-1100.
Spear and McKay Menswear, fully vertical operation, direct from factory to customer. Quality compare kar sakte hain aap Harry Rosen, Burberry or Hugo Boss se. 100% Italian wool suits from $249.99. 100% Egyptian cotton shirts from $29.99. 100% Italian wool trousers from $49.99. We have moved to a new location in Heartland Town Center, 775 Britannia Road West, Unit 7B, Mississauga pe. Hum Sundays ko bhi open hain. Zyada information ke liye call kijiye at 905-670-3388 ya visit kijiye hamari website spearandmckay.com.
بھائی خواتین کو تو زیورات بہت اچھے لگتے ہیں. چوڑیاں لے لو, کڑے لے لو, چینز لے لو, سٹون جیولرز, روبی جیولرز کا نام یاد رکھنا. شادی بیاہ ہے یا عام کوئی چھوٹا برتھ ڈے پارٹی اپ یا کسی کو گفٹ دینے کے لیے, یو مسٹ وزٹ روبی جیولرز. گولڈ کا ٹریڈ ہے یا پھر ریپیئر ہے, روبی جیولرز, 7086 ایئرپورٹ روڈ, 9056776888. خوبصورت دانت, با اعتماد مسکراہٹ اور با اعتماد گفتگو. آپ کی اور آپ کے خاندان کی مسکراہٹوں کی ضمانت. فلنگز, کراؤنز, بریجز, کلیننگ, ایکسپٹنگ نیو پیشنٹس, فری کنسلٹیشن, دانتوں کی سنبھال کے لیے ڈاکٹر پدمجا, 310 شیپرڈ ایونیو ایسٹ, 299-7466.
مچھلی انڈے دودھ دہی تے سستے چاول مل دے, بھلے پکوڑیاں تازہ مٹھائیاں گرم سموسے مل دے, بٹالا سپر مارکیٹ.
سکار پورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ, بٹالا سپر مارکیٹ, 200 مارکم روڈ, سکار پورو, مارکم روڈ تے انگلنٹن دا سنگم. فون 416-264-3111.
مزے مزے کے سکے, مزے کے کباب,
کھانا ہو تو آ جاؤ شاہین, شاہین ٹکا اور کباب.
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
مجھے مزے دے چکن ٹکے کباب, بریانی, دال تڑکا,
لاہوری اسٹائل ناشتہ, مزے دار کڑھائی, ماؤتھ واٹرنگ کباب, سیزلنگ باربیکیو آئٹم.
شاہین ٹکا اور کباب
ان فلیمنگٹن مال.
جی ویلکم بیک. تو پاکستان اور یو اے ای کے بیچ میں یہ بہت میجر نیوز ہے, اسی لیے میں نے سوچا کہ پاکستان کی نیوز آج سے شروع کیا جائے. پاکستان اور یو اے ای کے بیچ میں ایک ایم او یو سائن ہو گیا ہے جس سے کہ میوچل ویزا ایگزمپشن, یس یو ہرڈ اٹ رائٹ, ویزا ایگزمپشن اب مل رہی ہے. اور یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں یہ آج سامنے آئی ہیں 12th سیشن آف پاکستان یو اے ای جوائنٹ منسٹریل کمیشن جو ہے اس کی, جو ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے میٹنگ بتائی تھی کہ ہونے والی ہے اسحاق ڈار صاحب کے بیچ میں اور یو اے ای کے جو پرائم منسٹر اور جو ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور جو فارن منسٹر ہیں شیخ عبداللہ بن زائد النہیان, ان کے بیچ میں ان کی ایک ملاقات جو ہے وہ ہونے والی ہے. فارن آفس نے آج کہا کہ یہ ملاقات جو ہے 13 سال کے بعد ہوئی ہے, لاسٹ ایئر یہ اکتوبر میں ہوئی تھی. اور جو ہے ان دونوں نے آج ریویو کیا اسکوپ آف بائی لیٹرل ٹائز جو ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم کو اور زیادہ کوآپریشن بڑھانے کی ضرورت ہے, ٹریڈ, بینکنگ, کلچر, انویسٹمنٹ, ایویشن, ریلویز, فوڈ سیکورٹی, کلائمیٹ چینج, ڈیفینس, ہیلتھ کیئر, مین پاور, ہائر ایجوکیشن, آئی ٹی اینڈ انرجی میں. تو دس از بگ 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 بریکنگ نیوز فار پاکستان. ہر وہ بچہ جو کہ جانا چاہتا تھا اور بہت سارے اس کو مشکلیں ہو رہی تھیں, تو اب یہ جو ہے یہ یعنی کہ یو اے کے جو یعنی کہ جو عربز ہیں وہ اگر پاکستان آئیں گے تو ان کو ویزا نہیں چاہیے, اور اگر پاکستانیوں کو یو اے میں جانا تو اب ان کو ویزا نہیں چاہیے. تو دس از اے بگ نیوز. فارن آفس نے جناب یہ ڈسمس کیے ہیں رپورٹس کے جس میں کہ پاسبل میٹنگ ہو سکتی ہے ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف اور ان کے انڈین کاؤنٹر پارٹ راج ناتھ سنگھ جو ہیں ان کے بیچ میں. فارن آفس نے کہا کہ ایسی کوئی انگیجمنٹ جو ہے اسکیڈول نہیں کی گئی ہے. ایس سی او کی جو ڈیفینس منسٹرز کی میٹنگ چائنا میں ہو رہی ہے, یہ میٹنگ جو ہے یہ چائنا کے کوئنگ ڈاو کے اندر شروع ہو رہی ہے, اور یہ شروع ہو گئی ہے, آج سے شروع ہو گئی ہے. ٹرکش میڈیا کی کچھ ایسے رپورٹس آئی تھیں کہ جیسے دونوں کے بیچ میں ملاقاتیں ہو سکتی ہیں, और इनकी मुलाकातें जो हैं सिंह साहब जो हैं जिस वक्त करेंगे मुलाकातें डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ चाइना और रशिया, तो उसमें पॉसिबल है कि दूसरे कंट्रीज में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी करें। तो ऐसी आज जो है फॉरेन ऑफिस ने कहा कोई भी खबर नहीं है। और ख्वाजा आसिफ और राजनाथ सिंह जो हैं दोनों ही चाइना में मौजूद हैं लेकिन दे माइट नॉट क्रॉस द पैथ्स, तो ऐसा है। और जनाब एक और खबर आ गई है रॉ की, सारी जो स्कीम है जो कि हमने आपको कुछ दिन पहले भी बताई थी कि इससे पहले जो ईरान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर की थी, आज पंजाब जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसने अरेस्ट किए हैं 6 पाकिस्तानी नेशनल्स जो कि अलेजली रॉ के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तान की जो CTD थी उसने ऑपरेशन यलगार जो था वो लॉन्च किया था और उसके अंदर ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि रॉ के फैसिलिटेटर्स पाकिस्तान के अंदर कौन है। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लाहौर पंजाब के एडिशनल IG जो हैं शहजादा सुल्तान, उन्होंने कहा जी कि CTD ने बहुत सक्सेसफुली ये जो टेरर अटैक यहां पर फैला रहे थे पंजाब को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो सारा इन्होंने जो है पकड़ा है। इसमें इन्होंने अरेस्ट किए हैं 1 रॉ का फैसिलिटेटर बहावलपुर से, 2 इंडियन स्पाइस बहावल नगर से जो कि मस्जिदों के ऊपर और रेलवे स्टेशन के ऊपर खास तौर पे अटैक करना चाह रहे थे क्योंकि जाहिर है कि यहां पे लोग ज्यादा होते हैं तो उनका टारगेट है ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी मरे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी CTD ने कि हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बहुत सारे पकड़े हैं जिसके के अंदर 2 इंडियन इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स हैं उनकी बातचीत भी पकड़ी है और उनको आज CTD ने आइडेंटिफाई किया है मेजर रविंद्रा और इंस्पेक्टर सिंह, और वो कहते हैं जी ये दोनों ही रॉ के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा जी कि मेजर रविंद्रा जो है वो पर्सनली ये जो IED ये जो इम्प्रोवाइज जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेज जो होते हैं ये खुद पर्सनली डिलीवर करने के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर पे आया था ताकि मस्जिदों को टारगेट किया जा सके और ये जो फंडिंग इन लोगों को होती थी ये सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी से होती थी और ब्रांच लेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म से होती थी। उन्होंने कहा जी ये जो रिसेंट अटैक्स हुए थे DI के खान में अंदर यानी कि डेरा इस्माइल खान में और मियां वाली में ये सारे के सारे फाइनेंस हो रहे थे थ्रू अफगानिस्तान। CTD के जो ऑफिशियल हैं वकार अजीम खरल, उन्होंने कहा जी कि रॉ की फंडिंग जो है वो TTP को कॉन्स्टेंटली की जा रही है जो कि अटैक्स करते हैं DG खान में और मियां वाली में, और उन्होंने कहा जी कि ये तमाम 6 के 6 जो लोग पकड़े हैं ये पाकिस्तानी नेशनल्स हैं और इनको जो है बहुत हैवी पेमेंट्स जो है वो हो रहे थे। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है उसको हमने अब जो फॉरेन ऑफिस है उसको हमने बता दिया है और ये अब इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाएंगे और इंडिया की जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इन टेररिज्म और पाकिस्तानी सॉयल उसको अब पाकिस्तान एक्सपोज करेगा। इसके साथ साथ कराची के जो SSP है शोएब मेनन, उन्होंने भी आज एक प्रेस ब्रीफिंग दी है। उन्होंने कहा जी कि सिक्योरिटी एजेंसीज और SIU जो है उसने अरेस्ट किए हैं 4 पीपल लिंक टू रॉ और ये डायरेक्टली इन टच थे। आज इन्होंने भी नाम दिया, इन्होंने कहा कि देवर डायरेक्टली इन टच विद इंडियन आर्मी कर्नल रंजीत और जब इनको पकड़ा तो बहुत सारे इनके पास से एक्सप्लोसिव्स व्हीकल्स और वेपन्स जो है वो भी मिले। इसके अलावा बहुत सारी सेंसिटिव पिक्चर्स जो कि ये देने वाले थे और आर्मी के जो इंस्टॉलेशंस थे वो अपने हैंडलर्स को इंडिया में देने वाले थे वो सारी भी इन्होंने पकड़ी। इन्होंने कहा ये चारों के चारों जो थे ये सुजावल जो डिस्ट्रिक्ट है उससे थे और ये काफी दफा इंडिया का बॉर्डर जो है क्रॉस करके जाते थे एज मेनी टाइम्स एज 20। तो ये सारे का सारा जी अब क्रैकडाउन शुरू किया और ये पकड़ते जा रहे हैं इनको, जाहिर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में जो टेरर अटैक्स हैं पाकिस्तान में ये कुछ कम हो गए हैं, तो अब इसका मतलब है कि ये जो CTD है ये काफी आवाज कल तेज हुई हुई है। पाकिस्तान और US जो है उसने वो एग्री करेगा आने वाले दिनों में यानी कि नेक्स्ट वीक कुछ जो ऑनगोइंग ट्रेड टॉक्स हैं उनको, और इसकी आज सारी जो डिटेल्स हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दी है और एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब की US कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक के साथ जिसमें के टैरिफ के मामले बहुत सारे जो हैं अब जिसके ऊपर बातचीत हुई थी। पाकिस्तान जो है वो पोटेंशियली फेस कर रहे हैं 29% टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट्स टू US क्योंकि US ने कहा, ट्रंप साहब ने कहा कि $3 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है जो कि US ने अनाउंस किया था अप्रैल के अंदर। टैरिफ जो है उसको वैसे तो सस्पेंड किया गया था 90 डेज के लिए इसलिए ताकि टॉक्स को बिठाया जा सके, इसीलिए औरंगजेब साहब जो है लुटनिक साहब के साथ बातचीत कर रहे हैं। लास्ट मंथ पाकिस्तान ने एक बहुत हाई लेवल डेलीगेशन भी भेजा था US में इसी पर्पज के लिए। मई में पाकिस्तान ने प्रपोज किया था कि हम 0 टैरिफ्स लगाएंगे इन बायलैटरल ट्रेड डील विद US और उन्होंने बहुत वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक कंसेशंस भी दिए थे और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और ज्यादा चीजें खरीदेगा US से, फॉर एग्जांपल कॉटन एडिबल ऑयल्स जिनका के डोमेस्टिक मार्केट के अंदर काफी शॉर्टेज रहता है। तो इस तरह वो कहते हैं कि जी ये शायद टॉक्स जो है अच्छे तरह से आगे जाएंगे और मुझे लगता है कि इस वक्त ट्रंप साहब खुश है तो शायद इन टैरिफ्स जो है 29% उनसे पाकिस्तान बच जाएगा। राणा सनाउल्ला जो है उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट तो हमेशा बात करना चाहती है अपोजिशन के साथ, लेकिन इन मामलात को इसलिए नहीं सुलझाया जा सकता क्योंकि इमरान खान जो है सबसे बड़ा हर्डल है इस मामले के अंदर, वो रिजॉल्व नहीं करना चाहता है पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को। उन्होंने कहा कि एक मीटिंग गवर्नमेंट और पीटीआई के बीच में हुई थी जबकि हम फेडरल बजट अनाउंस कर रहे थे और गवर्नमेंट तो रेडी थी पीटीआई को एंगेज करने के लिए, लेकिन खान साहब का जो स्टांस था वो बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस से बड़ी दफा अपोजिशन को कहा है कि आप प्लीज आके बैठो और नेशनल असेंबली के स्पीकर के चेंबर के अंदर हमारे से मुलाकात करो गवर्नमेंट ने। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि बहुत सारे जो मैटर्स खासतौर पर जो केपी का जो बजट था उससे रिलेटेड केपी के लॉ मेकर्स के साथ किया था, खासतौर पर इम्पोजिशन ऑफ जीएसटी ऑन फाटा पाटा जो थी उसके ऊपर जो है बड़ी बातचीत हुई, तो उसके लिए फिर फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इसको जीएसटी को फाटा और पाटा के ऊपर जो है ये खत्म किया जाए। माइनस इमरान खान का रिमार्क जो कि अलीमा खान उनकी बहन ने इमरान खान की ने दिया था, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि कोई किसी को पॉलिटिक्स में से एलिमिनेट नहीं कर सकता है, सिर्फ पॉलिटिशियन साइड लाइन हो जाते हैं क्योंकि उनके अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर रहते हैं। तो भाईजान नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका, उनका अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड था उनको अपने साइड पे क्यों किया? बहरहाल एनीवेज पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो कहते हैं जी हम नीचे ला सकते हैं अगर पीटीआई जो है बात करने को तैयार है, पॉलिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन खान साहब जो है दूसरे पॉलिटिशियंस के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो जनाब ये बातें हैं। तो और आज जो है वो एक और भी बात सामने आई है कि ये जो केपी का बजट जो है जिसके ऊपर अलीमा खान ने बड़े गुस्से का इजहार किया था, इसको जो पास किया गया है इसमें जो बैरिस्टर सैफ है उसने कहा था कि जी हम गए थे, हमारी मुलाकातें खान साहब से हुई थी और हमने उनको सारे डिटेल्स बताए थे और उनको पता है कि ये इसमें क्या क्या है और आने वाले दिनों में और भी अगर बेहतरी वो चाहेंगे तो हम लाएंगे। तो ये बात एक आपको नहीं पता थी कि बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई है खान साहब के साथ। सिंध असेंबली जो है उसने आज पास किया है 2025-26 का बजट वर्थ 3.45 trillion rupees, मेकिंग 12.9% इंक्रीज कंपेयर टू लास्ट ईयर। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह जो है उन्होंने उनके पास ही फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी पोर्टफोलियो है, तो उन्होंने आज प्रेजेंट किया सिंध फाइनेंस बिल 2025। अपोजिशन ने सबमिट किए थे ओवर 2000 कट्स इन मोशंस पे, लेकिन वो तमाम के तमाम रिजेक्ट किए क्योंकि जाहिर है पीपीपी की जो है मेजोरिटी है असेंबली के अंदर। चीफ मिनिस्टर ने कहा जी कि ये जो बजट है ये स्ट्रेंथन करेगा सोशल प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इसके अंदर बहुत सारे टैक्स रिलीफ्स जो है वो दिए गए हैं, अमेंडमेंट्स लाए गए हैं स्ट्रीम लाइन लेवीज के ऊपर और की रिलीफ जो है वो विड्रॉल ऑफ 6 levies है लाइक प्रोफेशनल टैक्स। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि 5 billion rupees के हमने बेनिफिट्स दिए हैं सैलरीड इंडिविजुअल्स को और स्मॉल बिजनेसेस को। एंटरटेनमेंट ड्यूटी जो है वो भी स्क्रेप कर दी गई है ताकि जो कल्चरल एक्टिविटीज है उनको प्रमोट किया जाए। ये सर बहुत अच्छा काम किया है, गुड वेरी गुड बल्कि फीस फॉर लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है उसको भी रिड्यूस किया है 50%। एनुअल कमर्शियल व्हीकल टैक्स को कैप कर दिया है 1000 rupees। 43 billion जो है वो रखा गया है फॉर एडॉक रिलीफ अलाउंसेज। 16 billion rupees फॉर 15% पेंशन इंक्रीज के लिए रखा गया है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज को दिया जाएगा 42.2 billion rupees। 10.4 billion rupees ईयर मार्क किया गया है फॉर मेडिकल एजुकेशन फॉर बेनजीर हारी कार्ड जो है उसके लिए 8 billion। 2 billion लो इनकम हाउसिंग, 25 billion rupees रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए रखा गया है। तो देखने में तो लग रहा है अगर ये पैसे लोगों को मिल जाएं तो फिर तो बड़े अच्छे हैं, अगर नहीं मिलेंगे अगर गवर्नमेंट की जेब में जाएंगे फिर पाइन टीम का है। और जनाब आज क्या डेट है, हैं आमिर साहब आज क्या डेट है? आज है जून 25 को आज टुडे मार्क्स 50th anniversary ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और ये इंडिया की हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड डेमोक्रेटिक रप्चर महसूस किया गया था क्योंकि इंडियन रिपब्लिक की हिस्ट्री में डेमोक्रेसी को कभी भी ऐसा झटका नहीं आया था। फ्रॉम 1975 to 77 ना सिर्फ ये कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को सस्पेंड किया गया था बल्कि हिंदुस्तान कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो है उसको भी अंडरमाइन किया गया था, लेकिन इसमें बहुत सारी जो चीजें थी फिर वो शुरू हुई जिसने ट्रिगर किया इंदिरा गांधी को इनवैलिडेट और जो फिर जो यानी कि इनकी वैलिडेशन को खत्म किया और उसके बाद जो इलेक्शंस आए इलाहाबाद में वहां पे हाई कोर्ट जो थी उसने बिल्कुल ये चार्ज किया कि इलेक्टोरल मिस मेल प्रैक्टिस जो है वो देखी गई है और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बढ़ गया है और फिर सोशल अनरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था उसकी वजह से 1970s में बहुत सारे जो प्रोटेस्ट आए थे उसकी वजह से फिर इंदिरा गांधी को इलेक्शन कॉल करने पड़े इन 1977 और उसमें फिर इंदिरा गांधी की कांग्रेस को डिसाइसिवली डिफीट हुई थी। इंडिया ने रिस्टोर किए थे अपने डेमोक्रेटिक ऑर्डर को उसके बाद और उसके बाद वो कहते हैं जी कि कभी भी ना तो इरोड किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ना तो डेमोक्रेसी को, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2025 रिपोर्ट्स बाय वी डेम एंड फ्रीडम हाउस इंडिया जो है उसको अब क्लासिफाई किया जा सकता है अंडर इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, यानी कि इलेक्शन तो लाते हैं लेकिन ऑटोक्रेसी चल रही है, यानी कि लोगों को फ्रीडम नहीं है जो कि अंडर डेमोक्रेसी होते हैं एंड पार्टी फ्री। तो ये जो डेजिग्नेशंस हैं ये ट्रैक करते हैं सिस्टमैटिक डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग सिंस 2014, जब से कि मोदी जी और उनकी बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो जीत जीत के हिंदुस्तान के अंदर आ रही है। वो कहते हैं जी कि अंडर हिम जो है 2014 से ही हिंदुस्तान के अंदर प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज हो रहे हैं, एलिजली इंस्टीट्यूशनल सबसर्विजन है, वेपनाइज किया जाता है लीगल टूल्स को। ये हम नहीं कह रही है, इनकी जो रिपोर्ट्स है वी डेम और ये फ्रीडम हाउस की ये वो बोल रही हैं, तो हम आपको सिर्फ सुना रहे हैं कि वो क्या कह रही हैं। ये वेपनाइज करते हैं लीगल टूल्स को अगेंस्ट डिसेंटिंग वॉइसेस और पुश करते हैं टुवर्ड्स हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। ये दोनों रिपोर्ट्स कहती है कि ये शो करता है कि इंडिया इज अंडरगोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड डीपनिंग पॉलिटिकल कॉम्युनलिज्म, और ये शो करता है बड़ी खतरनाक, इन्होंने आज जो है दोनों रिपोर्ट्स ने बात कही है कि ये जीनोसाइडल रेट्रिक अगेंस्ट मुस्लिम्स जो है ये भी शो करता है। ग्रेगरी स्टेंटन जो कि फाउंडर हैं ऑफ जीनोसाइड वॉच, उन्होंने कहा जी